उनके कानों में कहीं से बहुत सुरीली संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ी। सबने सोचा कि ये कौन इस गली में और इतना अच्छा सितार बजा रहा है और गा भी रहा है। तो झरोके से झांक करके देखा तो कोई एक सितार हाथ में लिए है और उसे बजा रहा है और गा रहा है। घर के बच्चों ने देखा तो उन्होंने कहा कि देखो माँ, गौर से देखो, ये तो वही सितार है जो अपन ने फेंक दिया था। ये अपना ही सितार और ये इस तरह से संभाल करके और इतना सुरीले स्वरों में बजा रहा है। अब सारे घर के लोग इकट्ठे हो गए, सबने कहा कि ये तो बिल्कुल साफ साफ बेईमानी का काम है, हमारा फेंका हुआ सितार। फेंक देने के बाद भी कल तक तो जिसे अनुपयोगी समझ करके फेंक दिया था, आज उसी पर किसी और को तार संभाल कर संगीत बजाते देखकर अब मन डमाडोल हो गया। सबने नीचे जाकर के उस भिखारी नुमा उस सितार बजाने वाले से कहा कि मिस्टर, तुम्हें नहीं मालूम? अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो पूरे मोहल्ले के लोगों से कंफर्म करवाया जा सकता है कि ये सितार हम लोगों का है। उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, मैंने आपके घर में जाकर के ये सितार तो लिया नहीं है, बताइए। निकलने नहीं, आपने हमारे घर जाकर तो नहीं, तब हमने इसे कचरे के ढेर में से उठाया। हाँ ये भी सही है, तब फिर आपका क्या अधिकार जिसे आप अनुपयोगी समझकर फेंक चुके थे उसे हमने संभाल कर अगर उसमें से संगीत निकाला है तब फिर वो हमारा ही है, अब आपका उस पर कोई अधिकार नहीं। जीवन के बारे में भी ऐसा ही है, इस जीवन के सितार से जो संगीत नहीं निकाल पाते हैं वे इस जीवन को ऐसे ही अनुपयोगी मानकर और वेस्ट करते रहते हैं, फेंकते रहते हैं कचरे में। और जब दूसरे किसी के जीवन को बहुत आनंदित और हर्षित देखते हैं तब जरूर एक बार मन में ललक उठती है कि ऐसा ही जीवन तो मुझे भी मिला था जैसा इसको मिला है, लेकिन इसने अपने जीवन को इतने आसान और आनंदित तरीके से जीने का ढंग कैसे ईजाद कर लिया, कैसे इसने अपनी सांसों के तार इस तरह से संभाले हैं कि उन सांसों से संगीत ही निकलता है। अगर ऐसा ही हमारे जीवन में हम चाहें तो प्रेरणा ले सकते हैं दूसरे के जीवन से भी, जिन्होंने अपने जीवन को बहुत आनंदित और बहुत संतोषपूर्वक आसानी से जीने का ढंग सीख लिया है, उनसे हम भी अपने जीवन को आनंदित संतोषपूर्वक जीने का ढंग सीख सकते हैं। अंधानुकरण करने से व्यक्तित्व का विकास नहीं होता, बल्कि दूसरे के श्रेष्ठ व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर अपने व्यक्तित्व को वैसा ही बनाने की प्रक्रिया शुरू करने से हमारा जीवन भी अच्छा बनता है। हम अगर अपने जीवन को सचमुच बहुत बेहतर ढंग से जीना चाहते हैं, बहुत संतोषपूर्वक, बहुत आनंदित होकर के और आसानी से, क्योंकि अभी असंतोष में मुश्किल से रोते रोते जीवन बीतता है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा चेंज करें, संतोषपूर्वक आसानी से। मुश्किलें खड़ी हम खुद करते हैं अपने जीवन में, कोई और हमारे जीवन में तो बहुत थोड़ी मुश्किलें खड़ी करता है, अपने आप हम अपने जीवन में मुश्किलें खड़ी करते हैं और आसपास के जीवन को भी बहुत मुश्किल वाला बना देते हैं। तो सबसे पहली चीज, यदि हमें अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीना है तो हम देखें कि कहाँ कौन आसानी से संतोषपूर्वक आनंदित होकर अपने जीवन को जी रहा है, हम उससे प्रेरणा लें। भगवान महावीर स्वामी अपने मुक्ति का उपाय करके अपनी मुक्ति को हासिल कर लेते हैं, हम उनसे कोई प्रेरणा लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन हम उनसे ये अपेक्षा रखें कि वे हमारा भी अपने जैसा ही कल्याण कर देंगे, तो ये अपेक्षा हमारी ठीक है। हमें खुद उनके जैसा ही प्रयत्न करके उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को चाहें तो उनके जैसा भी बना सकते हैं, ये पहली चीज। फिर दूसरी चीज, हमें देखें कि व्यक्तित्व किसका श्रेष्ठ होता है। जो लोकप्रिय है उसका व्यक्तित्व श्रेष्ठ है क्या? जो बहुत वरिष्ठ शरीर वाला है उसका व्यक्तित्व श्रेष्ठ है क्या? जिसके पास बहुत बुद्धि है उसका व्यक्तित्व श्रेष्ठ माना जाता है क्या? बताइए, अपन को स्वयं निर्णय लेना है कि किस व्यक्तित्व से मुझे प्रेरणा लेनी है। तो बहुत ही बुद्धिमान लोग बहुत हैं जिनका कि बहुत बलिष्ठ शरीर है, बहुत लोग हैं जिनको कि लोकप्रियता प्राप्त हुई है, चाहे भले ही प्रसिद्धि की जगह पर बदनामी मिली हो, लेकिन लोकप्रियता तो उनकी भी है। पेपरों में नाम डाकू का भी निकलता है, स्मगलर का भी निकलता है। अगर लोकप्रियता देखी जाए तो ऐसे लोग भी लोकप्रिय हैं। अब तो बड़ा मुश्किल है कि हम जो लोकप्रिय हैं उनसे प्रेरणा लें, जो बुद्धिमान है उनसे प्रेरणा लें, या कि जो बहुत शारीरिक रूप से बलिष्ठ है उनसे प्रेरणा लें। हम अपने व्यक्तित्व के लिए किससे प्रेरणा लें, जबकि हमारे पास भी अपना शरीर मिला, हमें बुद्धि मिली है, और थोड़ा बहुत हमने भी अपने संसार में कोई ना कोई काम ऐसा किया है जिससे कि हम लोकप्रिय हुए। तो क्या इतने से हमारे व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा? इस पर विचार करना नहीं। जिसके शरीर, बुद्धि और मन इन तीनों में संतुलन है, यदि बुद्धि, शरीर और भावनाओं इन तीनों में जिसके संतुलन है, उसका ही व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है। अकेले शरीर से बलिष्ठ लेकिन दूसरे का बिगाड़ करने वाला, दूसरे का बुरा चाहने वाला कभी अपने व्यक्तित्व से ऊंचा नहीं उठ सकता। बहुत बुद्धिमान होने पर भी, बहुत बलशाली होने पर भी अगर खोटी भावनाएं रखने वाला है तो क्या उसको जीवन में और उसके व्यक्तित्व में ऊंचाई आ सकती है? नहीं आ सकती। अकेली भावना भावना हो और बुद्धि और शरीर से हम उस भावनाओं को साकार ना करें तो बताइएगा कि क्या हमारे व्यक्तित्व को हम ऊंचा बना पाएंगे? हमारी भावना है कि हम सबकी मदद करें, लेकिन हम कभी भी आगे बढ़ करके मदद नहीं करते। कभी मदद करने का हम सोचते भर हैं, तो क्या अकेले सोचने से हमारा व्यक्तित्व ऊंचा उठ जाएगा? तो ऐसा भी नहीं है। फिर इसका मतलब है कि जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारा सोच है, जो हमें शरीर मिला है, उससे जितना अपनी भावनाओं और विचारों से हो सके हम वैसा करने की कोशिश करें। लेकिन आज के समय में हम सोचते हैं कि व्यक्तित्व उसका अच्छा है जिसका शरीर बहुत सुंदर है, रूपवान है, या कि जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, बहुत जो बुद्धिमान है। इसके लिए दो छोटे छोटे से उदाहरण अपन देख लें तो शायद पता लग जाएगा कि हाँ, बाहरी सौंदर्य के साथ साथ अगर भीतरी क्रूरता हो तो व्यक्तित्व अच्छा नहीं होता। बाहर भले ही कोई क्रूर हो, लेकिन भीतरी अंतरंग में उसके सौंदर्य हो विचारों में, तब फिर उसका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा माना जाता है। ये पहले ऐसा चलता था ना, वो बहुत सारे किस्से आते हैं बच्चे लोग के पढ़ने के लिए, वो अकबर और बीरबल वाले, है ना। तो ऐसे ही जो है अकबर ने अपने दरबार में और एक बार बात छेड़ दी। बीरबल थोड़े से ब्लैकिश कलर के थे, सांवले रंग के, तो लोग उनको चिढ़ाया करते थे कि वैसे तो बहुत बुद्धिमान है लेकिन दिल लोग और देखने में उतने प्यारे नहीं रहते। तो उस पर व्यंग करने के लिए जो है वो और जो उनके दरबारी थे उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, व्यक्तित्व तो उसका ही अच्छा है जो कि रूपवान है। तो राजा को भी सूझी, उन्होंने कहा क्यों बीरबल, आपका क्या विचार है इसके बारे में? वो वैसे ही सुंदर नहीं थे। तुमने कहा महाराज, अभी तो जवाब नहीं दूंगा, दो चार दिन का समय दें, मैं आपको जवाब दे दूंगा कि अकेले रूपवान होने से किसी का व्यक्तित्व ऊंचा होता है, आप यही जानना चाहते हैं। दो चार दिन गुजरे और मौका आ गया, बड़ी गर्मी, और राजा ने कहा कि बीरबल जरा पानी तो पिलाओ, गर्मी बहुत लग रही। फौरन पानी मंगवाया गया, बीरबल ने आदेश दिया कि पानी लाओ भाई। तो पानी ला करके और सोने के ग्लास में, उससे कम में क्या मानेंगे राजा साहब, तो सोने के ग्लास में जैसे ही पानी पिया, पिए ही नहीं गया वो और बाहर हो गया। अरे कैसा वाला पानी लाया? अरे महाराज साहब, सोने के गिलास में लाया हूँ और सोने के कलश में से भर के लाया हूँ, हीरे जवाहरात लगे हुए हैं उस पर, कितना सुंदर है, आप नहीं देख नहीं माने तो देख लीजिएगा। वाकई में देखा तो इतना बढ़िया सुंदर कलश, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं और सोने का बना हुआ है, और उसमें से पानी दिया गया है। अच्छा होना चाहिए, लेकिन नहीं पिया गया। तब फिर बीरबल, ये तो पिया ही नहीं जाता, तब दूसरा ले महाराज। दूसरा वाला लाए, बहुत बढ़िया, पीने में भी सौंधा सौंधा लगा, ठंडा भी बहुत था। ये काहे में से लाए? ये तो इस काले से खराब से मिट्टी के घड़े में से लाया। तो महाराज अब निर्णय तो हो ही गया, आपने प्रश्न पूछा था ना, उसका जवाब मुझे देना था। जवाब आपके सामने है कि जो सिर्फ अपने व्यक्तित्व को बाहरी ताम झाम जोड़ करके बहुत ऊंचा मान लेता है, उसके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। उसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि व्यक्तित्व बाहरी सुख सुविधाएं जोड़ लेने से, या कि अपने शरीर को बहुत सुंदर हो जाने से अपने व्यक्तित्व को हम ऊंचा मानने का भ्रम ना पालें। भ्रम हमारे जीवन को ऊंचा उठने में, ऊंचा उठने में मदद ना करते हुए नीचे गिराने में मदद करता है। क्योंकि जो अपने को श्रेष्ठ मानने का भ्रम पाल लेता है इन छोटी छोटी चीज़ों से, कि मैं कार में घूमता हूँ, या कि मेरे पास आलीशान बंगला है, या कि मैं बहुत सुंदर शरीर वाला हूँ, या कि मेरे मानने वाले लोग बहुत, ये अगर मेरे व्यक्तित्व को ऊंचाई देती हैं ये चीज़ें, तो एक दिन ये चीज़ें मुझे मेरे पतन में भी कारण बनेंगी। मेरी गुणवत्ता मेरे व्यक्तित्व को ऊंचा उठाती है, ये चीज़ें मेरी गुणवत्ता की प्रतीक नहीं है। अगर इस तरह हम विचार करें और अपनी भावनाओं और अपने मन में गुणों को महत्व दें, तो शायद हमारा व्यक्तित्व ऊंचा उठे। तो हमने देखा कि व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने वाली, अपने जीवन को अच्छा बनाने वाली पहली चीज कि हम देखें कि कौन संतोषपूर्वक आनंद से आसानी से अपना जीवन जी रहा है, उससे प्रेरणा। और दूसरी चीज देखें कि बाहरी चीज़ें हमारे व्यक्तित्व को जितना ऊंचाई उठाती, उतना हमारा अंतरंग की भावों की निर्मलता या हमारी गुणवत्ता हमारे जीवन को ऊंचा उठाती है। एक बहुत प्रसिद्ध सी घटना है, एक प्रसिद्ध सा उदाहरण है जो सबको मालूम है, कि राजा के यहाँ पर बेचने गया था एक मूर्ति का, तीन मूर्तियाँ है ना, और एक सी थी, सब सुंदर। और राजा ने कहा कि कीमत क्या है, पहले वाले की 100 सोने के सिक्के, दूसरे वाले की 5 रुपए, तीसरे वाले की 1 कौड़ी। अरे तीनों एक सी सुंदर, साइज भी एक जैसी, छोटी बड़ी भी नहीं है, कहीं कोई समझ नहीं सकता कि ये इतनी महंगी, ये उससे बिल्कुल एकदम फ्री कहना चाहिए कौड़ियों के दाम। राजा ने कहा यह समझ में नहीं आया, मूर्तिकार आखिर इस मूर्ति में क्या विशेषता है जिससे कि तुम 100 सोने के सिक्कों से बेचते हो। उसने कहा राजन, मैं आपको तीनों के बारे में कुछ ना बता करके और इन तीनों की विशेषता जरा सा बता देता हूँ। एक तार, उसने जिसकी कीमत कौड़ी की थी वहाँ से शुरू किया, एक तार उसके कान में से डाला, जिस कान में से डाला उसमें से जाकर के दूसरे कान में से बाहर, दूसरे वाले के में डाला तो कान में से डाला और मुंह में से बाहर, तीसरे वाले में से डाला तो न मुंह में से बाहर आया न कान में से बाहर आया, भीतर चला गया। आया समझ में? वो जो 100 रुपए जिसके दिए जा रहे हैं 100 सोने के सिक्के, वो जितना अपने जीवन में जानता है या जानकारी हासिल करता है, सुनता है, समझता है, वो पूरा का पूरा अपने भीतर अपने आचरण में उतारने की कोशिश करता है। हमारे पास गुणों की जानकारी बहुत है, हम जानते हैं कि क्या दुर्गुण है क्या गुण है, लेकिन हम उन गुणों को अपने जीवन में जितना लाते हैं उतनी हमारी कीमत है। और जो सिर्फ गुणों के बारे में जानता तो है लेकिन इस काम से सुनकर दूसरे से निकाल देता है, ज़्यादा होता है तो दूसरे को बता देता है, लेकिन अपने जीवन में उन गुणों को लाने के लिए प्रयत्न नहीं करता, बताइएगा कि वो अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा सकता है। तीसरी चीज अपन ने चलते चलते सीख ली कि हमें अपने जीवन को गुणवान तो बनाना है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। गुणवान जो लोग हैं उनसे प्रेरणा लेनी है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे अपने जीवन को गुणवान बनाने के लिए, अपनी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयत्न भी तो करना पड़ेगा। और वो प्रयत्न किसी और के द्वारा नहीं होगा, वो मेरे अपन अपने द्वारा। लेकिन इसमें एक जरा सा एक बाधा आ सकती है कि गुणवान अपने को बनाने वाला कई बार मुश्किल में पड़ जाता है दूसरे के गुणों को देख करके, दूसरे के गुणों से ईर्ष्या करने लग सकता है, या कि अपने पास वे गुण नहीं होने पर अपने को बहुत दीनहीन भी मान सकता है। इन दोनों चीजों से बचना चाहिए। जब हम अपनी गुणवत्ता बढ़ाने प्रयत्न करना शुरू करेंगे तो दूसरे के गुणों को देखकर हम ईर्ष्या ना करें बल्कि उसके गुणों से प्रेरणा लें, क्योंकि हम ध्यान रखें कि जो जहां है वो अपने आप में बहुत यूनिक है। हम ये नहीं सोचें कि जैसे एक किसी नाटक में कोई एक कलाकार जो उसका नायक होता है वो अपनी नायक की भूमिका अदा करता है और दूसरा कोई विदूषक होता कॉमेडियन होता है, लेकिन वो कॉमेडियन उस नायक से कम नहीं है, वो भी अपने उस कॉमेडी में परफेक्ट है। इसलिए हम कभी भी ये ना सोचें कि दूसरे के गुण हमसे ज्यादा क्यों हैं, हम उससे ईर्ष्या ना करें। हमारे पास जो गुण है हम उन गुणों को देखें और उन गुणों का और विकास करना शुरू करें। इससे क्या होगा कि जो गुण हमारे पास नहीं है उनको लेकर के हम चिंतित होकर के और अपने को दीनहीन नहीं मानेंगे, और जो गुण दूसरे के पास हैं हम उनको देख करके हर्षित होंगे, क्योंकि उसके पास जो गुण है वो उसकी अपनी क्वालिटी है, मेरे पास जो गुण है वो मेरी अपनी क्वालिटी है। अगर चिड़िया ये चाहे कि मैं तो वो वाला गुण भी पाऊं जो चूहे के अंदर है, कि मैं तो एक गड्ढा खोद करके उसमें अपने लिए घर बनाऊं, तो पंख पंख गमा बैठेगी चिड़िया। इसलिए चिड़िया को ऐसा गुण प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जैसा चूहे में। और चूहे महाराज ये चाहें कि मैं भी चिड़िया के समान उड़ करके देखूं तो वे भी हाथ पर तोड़ बैठेंगे। आया समझ में? मेरे ख्याल से इससे जल्दी समझ में आएगा। हमारे भीतर जो क्वालिटीज हैं हम उनको तो देखते नहीं है, दूसरे के भीतर जो क्वालिटी है उनको देख करके या तो ईर्ष्या करते हैं या फिर अपने आप में दीनी होकर बैठ जाते हैं। अरे हम क्या कर सकते हैं, हमारी मौलिकता क्या है, हमारी अपनी जो हम बाई बर्थ क्वालिटी लेकर के आए हैं उसको हम क्यों नहीं डेवलप करते हैं? सबके प्रति सबके हृदय में एक ना एक गुण लेकर के वो आता है। आचार्य महाराज हमारे हमेशा कहा करते हैं कि किसी को भी अपने से कम मत मानना। सबके भीतर जो एक दीनहीन गरीब दरिद्र दिखाई पड़ता है, जो बहुत कहना चाहिए बुद्धू मालूम पड़ता है, उसके भीतर भी कोई ना कोई गुण है। ठीक ऐसे ही जैसे किसी का बहुत बड़ा महल हो और किसी की झोपड़ी हो, पर आने जाने का दरवाजा एक दोनों में रहता है। आपकी हवेली तब तक है जब तक आने जाने का दरवाजा है, और झोपड़ी क्यों ना हो उसमें भी आने जाने का दरवाजा दोनों में। भले ही हवेली बहुत बड़ी हो और घास फूस की बनी हुई झोपड़ी बहुत छोटी, लेकिन एक ना एक चीज जो कि उसमें क्वालिटी है वो हमेशा है। ऐसा विचार हमारे अंदर जब भी हम गुणवत्ता हासिल करने जाएं तब ये ध्यान रखें। और आखिरी चीज कि भलाई और बुराई दोनों का संयोग हमारे भीतर है। कोई भी यहाँ बुरा बुरा ही नहीं है, और भगवान के अलावा कोई भी यहाँ भला ही भला नहीं है। क्या सबसे भले हैं तो भगवान है, और सबसे बुरा है? सबसे बुरा कोई नहीं है। सबसे भले भर भगवान है, बाकी सब भलाई और बुराई का संयोग है। चाहे क्षुद्र जीव भी क्यों ना हो उसके भीतर भी भलाई है थोड़ी, बुराई का रेशियो हो सकता ज्यादा हो। 100 में से 99 बुराइयां हो, एक अच्छाई उसके भीतर है। भगवान है जिनके भीतर 100 में से 100 अच्छाइयां है। हम हैं किसी के भीतर 50 बुराइयां 50 अच्छाइयां, किसी के भीतर 60 अच्छाइयां 40 बुराइयां, संभव है। रेशियो अलग अलग हो सकता है, लेकिन भलाई और बुराई दोनों हमारे भीतर बैठी हैं। अब सवाल ये है कि अगर मुझे अपनी गुणवत्ता बढ़ानी है तो मैं दूसरे और अपने भीतर बुराइयों का सम्मान करता हूँ या कि अच्छाई का सम्मान करता हूँ, ये बार मुझे देख लेना चाहिए। मैं दूसरे से अच्छाई की अपेक्षा करके दूसरे के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं करता हूँ, ये देख लेना चाहिए। बस दो ही चीज़ें देखना और मामला अपना आसान हो जाए। मैं दूसरे के भीतर सिर्फ बुराई बुराई देखता हूं या कभी कोई अच्छाई भी देखता हूं, और अपने भीतर सिर्फ अच्छाई अच्छाई देखता हूं या कि मेरे भीतर की बुराइयों को भी मैं कभी देखता हूं, एक चीज। दूसरी चीज ये कि मैं बुराई का सम्मान करता हूं या कि अच्छाई का। अगर मैं अच्छाई का सम्मान करता हूं तो अपने भीतर की बुरी चीजों के लिए क्षमा क्यों चाहता हूं? मैं उन बुरी चीजों को निकालने की इच्छा क्यों नहीं रखता? जबकि मैं दूसरे के भीतर कोई बुरी चीज हो तो उसको कहता हूं कि हटाओ उसमें से, ये आपके अंदर अच्छी चीज नहीं है। ऐसा ही मैं अपने साथ क्यों नहीं करता हूं? मैं अपने आप से क्यों नहीं कहता हूं कि ये चीज मेरे भीतर बुरी है, हटाओ उसको, यहां ठीक नहीं लगती? मैं दूसरे से तो ऐसा कहता हूं। बस अगर ये चीज अपने जीवन में आ जाए तब फिर देखिएगा कि धीरे धीरे करके हमारे भीतर से बुराइयों का रेस्क्यू घटना शुरू होगा, हमारी गुणवत्ता अपने आप बढ़ना शुरू होगी। जितनी कम बुराइयां हमारे भीतर होंगी उतनी गुणवत्ता हमारे अंदर अपने आप आ जाएगी, क्योंकि गुणवत्ता हमारी अपनी है, वो फॉरेन नहीं है, वो बाहर से आई नहीं है। ये बुराइयां ये बाहर से हमारे भीतर हमारी अपनी असावधानी से आई हुई हैं। हम इस बात के लिए सावधान हो जाएं कि अब बुराइयां मेरे भीतर आना कम हो जाएं और जो पहले से पड़ी हैं वे भी मैं वॉश आउट करना शुरू करूं, तो मुझे अच्छाइयां लाने के लिए कहीं से कोशिश नहीं करनी है। वो मेरा अपना नेचर, वो मेरा अपना स्वभाव। अगर इस तरह हम अपने जीवन में चाहें तो आसानी से और अपनी गुणवत्ता बढ़ाकर अपने व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं, अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। दो छोटे छोटे से उदाहरण मैंने एक किताब में पढ़े थे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हुए हैं, अच्छे साहित्यकार रहे, उनकी किताब में मैंने पढ़े थे। दो घटनाएं हैं, उनसे दोनों से मालूम पड़ जाता है कि कहाँ हम जीवन में और चूक जाते हैं। हम दूसरे के साथ बुरा कर देते हैं पर दूसरे से अपने साथ वो अच्छा करे ऐसा चाहते हैं। काश हम दूसरे के साथ अच्छा करें और कोई हमारे साथ बुरा करे तब भी हम दूसरे के साथ अच्छा ही करें। अगर ये आदत हमारी पड़ जावे तब फिर तो हमारा जीवन अच्छा हो ही जाएगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं। दो उदाहरण में से पहला उदाहरण ऐसा है कि अपने मित्र के साथ घूमने जा रहा है एक व्यक्ति, वो उन्होंने अपना संस्मरण खुद लिखा कि वो कन्हैयालाल लिखते हैं कि मैं अपने मित्र के साथ जा रहा हूँ और कोर्ट का कोई काम याद आ गया तो सोचा कि चलो कोर्ट का काम कर लेते हैं, अब फ्री हैं तो उनके मित्र को भी कोर्ट का काम याद आ गया तो दोनों ने तय किया कि चलो चल। धूप बहुत थी, थोड़ी देर तो रास्ते में चले, फिर सोचा कि तांगा कर लेते हैं, तांगा कर लिया। तांगे वाले से तय हुआ, वो तो कह रहा था 2 रुपये, लेकिन मित्र ने कहा नहीं 1.5 देंगे। उसने कहा ठीक है बाबू चलो दोनों जन 1.5 रुपये में तय हो मामला। अब इनको पता नहीं था कि मित्र क्या करने जा रहे हैं, मित्र के मन में 1.5 रुपये के पीछे एक कोई बात थी, वो बात ये थी कि 2 रुपये का खुले नहीं है इसका तो बहाना था। उनके पास एक आठाना था जो कि खोटा सिक्का था और उन्होंने उसको उस दिन चलाने की सोच ली कि तांगे वाले को थमा देंगे, इसलिए उन्होंने उसको 1.5 रुपये में तय किया था कि 1 तो पूरा देंगे और 1 रुपये के अंदर इस तरह लपेट करके वो आठाने दे देंगे, वो ले लेगा। तांगे वाले भी इनका वेशभूषा देगी कि बाबू लग रहे हैं। आज के समय में ये बड़ा मुश्किल है कि जो बाहर से बाबू लगता है भीतर से जरूरी नहीं कि बाबू हो, ये बड़ा मुश्किल हो गया। बाबू शब्द जो है वो अच्छे व्यक्ति के लिए है लेकिन आज किस चीज का सिंबॉल बन गया। कैसे हम शब्दों को उनके स्तर को गिरा देते हैं, अपने जीवन के स्तर को गिरा करके हम इन शब्दों की वैल्यू कम करते हैं। और वो तो बाबू समझ रहा है और दोनों को बिठा लिया उसने, और जब जनाब वहां उतरे तो बिल्कुल वही जो तय किया था उनने वो 1.5 रुपये पकड़ाए। कन्हैयालाल ने लिखा कि मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जब तांगे से उतर करके और तांगे वाले को पेमेंट करके आगे बढ़े तो बड़े खुश मित्र नजर आए। हमने कहा भाई खुश क्यों? उसने बोले यार चल गई वो अठन्नी, बहुत दिन से पड़ी थी, वो जो आठाने पैसे खोटे पड़े थे चल गए। बोले मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा मित्र होकर के ऐसा है, लेकिन अब क्या कहें। मैंने कहा कि इसको समझ आ जाएगी, अपने आप आएगी। संसार में अगर एक्शन है तो जस्ट अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन भी है, देर सवेर होता है। कोई व्यक्ति सोचता जरूर है कि हमने दूसरे के साथ बुरा किया है तुम्हारे साथ तो कभी बुरा नहीं होगा, लेकिन वो तैयार रहे उसी क्षण अगले क्षण के लिए या अगली जिंदगी के लिए। और 5 बजे वापिस लौटना है और चल पड़े, कोई तांगा नहीं दिख रहा है, पैदल चल पड़े। थोड़ी दूर गए थे और एक तांगा आता दिखा, हाथ दिया तांगे वाले, हाँ बाबूजी। जैसे ही देखा कह रहे ये तो वही है, चलो बैठते हैं। बैठ गए, अब तय भी करने की जरूरत नहीं थी 2 रुपए, अब तो तय है कि 1.5 रुपए में आएंगे। तो तांगे वाले को अब की बार तो अठन्नी थी नहीं, अब की बार तो जब नीचे उतरे तो इनने 2 रुपए पकड़ा है उसको, ये 2 रुपए आठाने वापस करो। उसने आता नहीं तो वापस कर दिया आठाने। अब इनने देखा तो इनने कहा कि खोटा, अब ये नहीं कह सकते। अगर ये कहते हैं कि खोटा है ये आठाना तो बाबू आपने ही तो दिया था, मैंने तो आ गया लौट करके वापस। बेईमानी दूसरे के साथ करके हम बेईमान बनते हैं, मुझे कहना ये है। उसने कुछ भी नहीं किया लेकिन हमने जो किया उसका प्रतिफल हमारे अपने जीवन में स्वयं मिल गया। और दूसरी घटना बताऊंगा, ये तो बुरे का फल बुरा, लेकिन ध्यान रखना अच्छे का फल तुरंत भी अच्छा मिलता है, बाद को भी अच्छा मिलता है, इस पर भी हमें विश्वास होना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं रोज एक पान वाले से पान खरीदता और उसे कभी 4 आने दे देता हूँ, कभी 8 आने दे देता हूँ, कभी 1 रुपये भी दे देता हूँ, और वो मुझे पैसे लौटाता है, मैं पॉकेट में रख लेता हूँ। जिंदगी हो गई, मैंने उसे 10 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट भी कभी दिया तो मैंने जब वापस लिए तो कभी गिने नहीं और रख लेता था। वो हमेशा कहता था बाबू गिन लो, मैं हमेशा रख लेता था चुपचाप।
हम देखते हैं कि क्या होता है कि व्यक्ति आपके हमारे जीवन को अच्छा बना सकते हैं। व्यक्ति हमें ये मालूम कर लिया है कि हमारा जीवन हम खुद अच्छा बना सकते हैं। हमें एक ऐसी दृष्टि मिली है अपने जीवन को अच्छा बनाने की, इतना ही कैसे जीवन अच्छा बनेंगे ये प्रक्रिया ये प्रोसेस जो कि हमने अच्छे से समझ लिया है, तो फिर अब फिर क्या है करने के। मेरे ख्याल से तो इतना सब मालूम करने के बाद भी तो करने के लिए फेस कर जाता है, जिससे ये नहीं आता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इस बात का नहीं जिसे ऐसी दृष्टि ही जिसे नहीं मिली, ऐसा ज्ञान ही जिसे नहीं मिला, वो अगर अपने जीवन को अच्छा बनाने के रास्ते पर चले उसकी दिशा में जाए तो हमें तो दृष्टि मिल गई, हमें दिशा मिल गई, हमें ज्ञान मिल गया। बस अब शेष इतना है कि हम एक एक कदम अपना आगे बढ़ाने की शुरुआत करें। एक और श्लोक में आचार्य महाराज ने लिखा है कि सोचा जाने चलना, सोचा जाने पावगा, उभयम से जाने सोचा जनप्रियम कम समाचार। जब हमें नहीं मालूम था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन जो हमने सुना जो हमने उपदेश प्राप्त किया, हमें जब ये दृष्टि मिल गई कि ये अच्छा है ये बुरा है, क्योंकि सुनते ही अच्छे और बुरे के बारे में जाना जाता है। सोचा जाने पावगा, सोचा जाने प्रियम, जिसमें जिसमें मेरा कल्याण है वो भी मैं उपदेश से सुन चुका हूँ, जिसमें मेरा अकल्याण है उसके लिए मैंने जिनवाणी मार्ग से गुरुजनों से और साक्षात अरंभ भगवान की वाणी से ये बात जान ली। तब करने को क्या सोचता जब किया जन क्षमा करो, जिसमें अपना कल्याण है वो शुरू करे। मैं जब दशरथन में 1986 में वहाँ कोटा में था और लगातार 10 धर्म पर हम लोगों ने एक साथ बैठ कर और विचार किए, तब मैं आपको बताऊंगा कि 10वें दिन और उसमें से एक युवक 30 वर्ष का मेरे जीवन में वो घटना हमेशा याद रहा। उसने आकर के मैंने चाहिए कहा कि अब मुझे न आपको सुनना है और न किसी और को सुनने की आवश्यकता। मैंने कहा हुआ क्या कि गलती हो गई, वो तो नहीं है, मुझे अब आपको भी सुनने की आवश्यकता नहीं है न किसी और को सुनने की आवश्यकता, बहुत सुन लिया, अब तो ये बताइएगा कि करना है। ये ललक भीतर से पैदा हो गया कि मैंने जान लिया जो मेरे जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया है, मैंने उसे जान लिया, मुझे वो दृष्टि भी मिल गई जिससे कि मैं अपने रास्ते पर ठीक से चल सकता हूँ। कल तक अंधकार था मेरे रास्ते पर, मुझे रास्ता नहीं सूझता था, इसलिए ठीक है कि मैं नहीं बन पा रहा। कल मुझे बड़े कंफ्यूजन थे कि इतने डाइवर्सन थे, इतने वही परफ्यूशन थे कि मैं किस दिशा में मुड़ जाऊँ। नहीं, मुझे यही मालूम पड़ गया कि मुझे ठीक एक दिशा में जाना है, दूसरे को मुड़ जाना है और जहाँ पर पेड़ आएगा वहाँ जाकर के और मुझे थोड़ी देर विश्राम भी किया जा सकता है। जैसे कि हम रास्ते में चलते हैं तो पूरे रास्ते का ज्ञान भी हो गया कि रास्ते में कहाँ कौन से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, कहाँ कौन सी मुश्किलें आ सकती हैं, ये भी मालूम पड़ गया, सारी जानकारी हो गई, मुझे दिशा भी मिल गई कि इस रास्ते पर जाना है। इसके बाद भी मैं नहीं चलू, ऐसा हो कैसे सकता है? एक व्यक्ति रास्ते के किनारे बैठा हुआ है, लोग निकलते हैं, उससे पूछते हैं कि क्यों भाई तुम आठ बन चुकी है क्यों बैठे हो, क्या तुम्हें चलना नहीं कहीं जाना नहीं? बोले मुझे जाना है। अरे जब तुम्हें जाना है और रास्ते के किनारे बैठे हो तो आँखें खुलो और चलना शुरू करो। वो बोलता है कि मैंने तय किया है कि सूरज की रोशनी जब निकली तब मैं आँख खोलूँगा और जब मैं आँख खोलूँगा तब चलना शुरू करूँगा। अब उसको कौन समझाए कि बाबा पहले आँख खोल के देखो तो कि निकली कि नहीं निकली, आँख बंद किए वाले को तो सूरज निकल भी आए तब भी अंधेरे। अब जो व्यक्ति अपने हाथ से इतना भी उद्यम न करे उस व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाने की कोई शक्ति आचार्य भगवान सेल्फ डिसिप्लिन की प्रक्रिया है, उसी का नाम तो चारित्र और कोई तो बहुत कठिन की चीज है। इस तरह यदि हम धीरे धीरे अपने जीवन में विचार करना शुरू करें कि मैं अपनी डिलीवेशन खुद तय करूं, मैं अपने आप को स्वयं अनुशासित करूं। गांधी जी ने लिखा कि दूसरे के द्वारा लगाया गया अंकुश हमारे जीवन को पतन में कारण बनता है और अपने हाथ से अपने ऊपर लगाए हुआ अंकुश हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में कारण बनता है। हमारे यहाँ पर अनुशासन का उतना महत्व नहीं है जितना कि आत्मानुशासन का। आत्मानुशासन के मायने में ये चारित्र है, मैं अपने राग द्वेष को घटाना चाह रहा हूँ, मैंने खुद ये तय किया है, तब फिर मैं उन सब चीज़ों से बचूंगा जिनमें कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे राग द्वेष हो जाए, ज़्यादा मेरे अपने पराये और तेरे मेरे का भाव होता है। अपन लोग क्या कहते हैं घर में बच्चों से, अरे प्रेम से रहो, क्या तेरा मेरा लगा के रखा, यही ना। ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को हम समझें। हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाली चीज़ है। हम जितना अपने जीवन में राग द्वेष हटाएंगे उतना हमारा जीवन शांत और निर्मल होगा, और जीवन का शांत और निर्मल होना ही उसका आचरण है। हम लोग सोचते जाएँ कि जो जितना ज़्यादा व्रत नियम का पालन करता होगा वो उतना ज़्यादा आचरणवान है। भैया ये एक कथन की शैली है, वास्तव में व्रत नियम का उद्देश्य क्या है, मेरे आचरण में मेरे परिणामों में निर्मलता है, मेरी दशाएँ मंद हैं, इसलिए जितनी जितनी दशाएँ का अभाव होता है, जितना जितना हम आत्मानुशासित होते चले जाते हैं उतना उतना चारित्र बढ़ता है। यह चल मंत्र स्वामी इसलिए कह रहे हैं कि भगत देश के वक्त हिंसा भी निवर्तना करता तो है। अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे अपने अंतरंग के परिणामों को निर्मल बनाना है, निद्राग बनाना है, तो छोड़ो फिर बाहर के पास छोड़ो, वो तो छूट ही जाएंगे। आप छोड़ेंगे क्या, वो तो छूट ही जाएंगे। जिसका चित्त निर्मल है वो दूसरे व्यक्ति का बिगाड़ करेगा क्या, दूसरे को मारपीट करेगा क्या? अच्छा इसको दूसरे ढंग से ले जाता, किसी व्यक्ति से अगर हमारा बहुत स्नेह है तो क्या हम उसको टॉर्चर करते हैं, क्या उसको हम पीड़ा देते हैं, क्या उसके साथ मारपीट करते हैं, कभी नहीं करते। उसके साथ क्या हम झूठ बोलना पसंद करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। क्या हम उसके किसी सामान से चुराते हैं, अरे जिससे हमारा प्रेम है वही हमारा है तो उसका सामान भी हमारा होगा, फिर चुराने की जरूरत। जो व्यक्ति हमारा अपना है जिसको हम बहुत स्नेह करते हैं, क्या उसके प्रति हम दुर्भावना अपने मन में उत्पन्न करते हैं, क्या कभी नहीं करते। और हम उसकी संचित की हुई संपत्ति को हड़पने की ताक में रहते हैं, क्या नहीं रहते। हो गया काम चिंता जो चोरी किसी खरीदे यही ना। एक अकेले किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में और प्रेम भाव जागृत हो जाता, हमारे मन में उसके प्रति आत्मीयता उत्पन्न हो जाती, तो हमारे मन से धीरे धीरे करके और वे पाप उस व्यक्ति के प्रति हटना शुरू होते हैं। और अगर ऐसे प्राणी मात्र के प्रति मेरे मन में प्रेम उत्पन्न है, जीव मात्र के प्रति, तो फिर दूसरे किसी को हिंसा करना, दूसरे को झूठ बोलना, चोरी करना, उसके प्रति अनचैचिटी अनकैलिब्रेसी, फिर हमारे मन में क्या इस तरह की चीज़ें आएंगी, पजेसी नोट आएगी नहीं है। अगर हम इस तरह से सोचें तब हमारे जीवन में व्रत नियम का महत्व अपने आप हमें समझ में आने लगेगा। अभी तो ये बच्चा हवा मालूम पड़े और विजय रहेंगे अपन के चारों प्रवाहित नहीं होता। आचरण वाचरण अपने बस का नहीं है, न व्रत नियम प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा पवन बता नहीं ले सकते। अब तो ये खतरनाक चर्चा शुरू होने वाली है लगता है चारित्र की, है ना। अभी तक तो ठीक था, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान चल रही थी, अब ये सम्यक चारित्र में तो क्या करेंगे महाराज, अब व्रत नियम दिलवाएंगे नहीं, आप ले लेंगे, आपका मन करेगा। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपके अंदर दृष्टि निर्मल हो गई, आपके अंदर अपने कल्याण का ज्ञान आ गया है, तो आप अपने कल्याण के लिए सारी चीज़ें छोड़ेंगे। कोई आपको मजबूर नहीं करेगा कि आप इन चीज़ों को छोड़िए। त्याग मजबूरी नहीं है, त्याग तो हमारी अपनी नेचुरल कहना चाहिए एक हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर हम उसको ना अपने जीवन में अपनाएं और फिर ग्रहण ही ग्रहण करते चले जाएँ तो हम तो परेशान हो जाएंगे। देख लो अपने जीवन में थोड़ा सा घटित करके देख लो, अगर हम चीज़ों को ग्रहण करते जाएँ, खाते ही खाते चले जाए, पेट में कितनी देर तक संचित होंगे, जब तक वो वेस्ट हमारा बाहर नहीं निकलेगा तो हम और ग्रहण नहीं कर सकते। ग्रहण के साथ त्याग से जुड़े हुआ है, लेकिन हम त्याग को भगाते हैं और ग्रहण के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। अगर हम और आचार्य भगवंतों के चरणों में बैठे तो एक और सीधी शक्ति परिभाषा बनाते हैं सरल की, अशुभा जो विवृत्ति से ही पवित्री है ज्ञान चारित्रम, अगर ये समझ में नहीं आता कि मैं रागदेश कैसे घटाऊं, मैं पापों को कैसे छोड़ूं, तो चलो ऐसा कर लेते हैं, जिस चीज़ को आप दूसरे से अपने प्रति करना पसंद नहीं करते, वो आप दूसरे के प्रति करना बंद कर दीजिए। अशुभादो विनिवृत्ति सहे पवित्र, आप जिन चीज़ों को अशुभ मानते हैं, अच्छा कोई आपके साथ में और बुरा व्यवहार करे, आप उसे अच्छा मानेंगे? मैं छोटे बच्चों को जब पाठशाला में यहाँ जब स्कूलों से आ रहा था आपके यहाँ पर, तो स्कूलों में रुकना होता था, तो बच्चों को जब मुझे कहना पड़ता था तो मैं यही कहता था, अच्छा बच्चों से बताऊँ क्या कोई तुम्हारे साथ मारपीट करे तो उससे अच्छा मानेंगे? नहीं, उससे अच्छा नहीं। कोई तुमसे झूठ बोले तो अच्छा मानेंगे? नहीं मानेंगे। कोई तुम्हारे सामान की चोरी करे तो अच्छा मानेंगे? नहीं मानेंगे। कोई तुम्हारे तुम्हें बुरी दृष्टि से देखे अच्छा मानेंगे? नहीं मानेंगे। कोई तुम्हारे कोई अपने पास सारी चीज़ें जोर जोर के रखे और किसी को ना दे उसे अच्छा मानेंगे? कुछ नहीं मानेंगे। अरे जब हम उन चीज़ों को अच्छा नहीं मानते तो हम अपने जीवन में उन चीज़ों को क्यों शामिल करें? इतनी छोटी सी चीज़ समझ में आ रही है जीवन की, इसमें तो कुछ भी कठिन नहीं है। आप बताइएगा, क्या हम दूसरा हमारे साथ मारपीट करे तो अच्छा नहीं मानते, तो हम दूसरे के साथ में उस तरह हिंसा का और उसको तकलीफ पहुंचाने का विचार रखें, क्या अच्छा है? हम दूसरे से झूठ पसंद नहीं करते, हम दूसरे से झूठ बोलना पसंद नहीं करते, दूसरा हमसे झूठ बोले तो हम पसंद नहीं करते, हम दूसरे से झूठ बोले तो हमें पसंद है, दूसरा हमारे सामान को चुराए हमें पसंद नहीं है, लेकिन हम दूसरे के सामान को किसी न किसी तरह से हड़पने की कोशिश करेंगे, हमें पसंद है। अरे वाह, फिर हमारा क्राइटेरिया क्या है? ये तो दोहरा मापदंड होगा, अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और। हम इस बात पर विचार करें कि जो जो चीज़ें मैं दूसरे के द्वारा अपने लिए पसंद नहीं करता, वे चीज़ें अशुभ ये तय हो गए, और जब वे चीज़ें अशुभ हैं तो वे मेरे जीवन में भी नहीं होने चाहिए। और अगर मैं इस तरह से उन अशुभ चीज़ों को, उन बुरी चीज़ों को जिनको मैं बुरा मानता हूँ, अपने जीवन से दूर करना शुरू करो, तब देखिएगा इसी का नाम तो चारित्र है, इसी का नाम तो आचरण की निर्मलता है भैया, और क्या विशेष बात है। लेकिन हम लोग घबराते हैं, डरते हैं उन चीज़ों से, जिन चीज़ों से हमारा मन खराब हो, जिन चीज़ों से दूसरे का भी मन खराब हो, हम उस चीज़ को छोड़ना शुरू कर दें। चलो जो चीज़ें हमें आवश्यक नहीं है उन चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दें, कहीं से तो शुरू करें। जिन चीज़ों से हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हमारा पतन होता है, उन चीज़ों को हम छोड़ना शुरू कर दें। इन अशुभ से बचने की प्रक्रिया हम इस तरह से शुरू कर सकते हैं। आप ऐसे जीवन में चाहें तो आसानी से आचरण अपना बदल सकते हैं, बहुत आसान है। थाली में 50 चीज़ें आ जाती हैं, हम तय कर लें कि हमको तो सारी चीज़ें खानी हैं, हो गया था कि ऐसा नहीं कर सकते। दिन भर में हमारे पास तो 50 जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं, हम दिन भर में चाहें तो 10-25 बार कपड़े चेंज कर सकते हैं, नहीं हमने तो तय कर लिया आज से 2 से ही काम चलाऊंगा, क्या ऐसा अपने आप ऊपर अंकुश नहीं रख सकते हैं? आज तो मैं 1 घंटे कुछ भी नहीं बोलूँगा, बोलूँगा तो प्रेम से बोलूँगा, घृणा से नहीं बोलूँगा, क्या हम इस तरह से अपनी वाणी को व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं? आज तो मैं ये क्रियाएँ नहीं करूँगा, आज मैं ये करूँगा ये नहीं करूँगा, इदम कर्तव्यम इदम ना कर्तव्यम, इदम आचरणीयम इदम ना आचरणीयम, इसी प्रतिज्ञाएँ नियमों जाए थे, इसकी प्रतिज्ञा का नाम तो नियम है कि मैं यह करूँगा या नहीं करूँगा। जब मेरे से लोग पूछा करते थे यूनिवर्सिटी में, क्या चाहते थे, नहीं चाहते, क्या लॉजिक है आपके पास, मैं कहता था मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं चाहता, क्या इसका सीधा सा आंसर अपने पास नहीं है? हमें किसी को कोई आर्गुमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, कोई हमें उसको आंसर देने की आवश्यकता नहीं है, इससे बढ़कर मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे आप 1-1.5 घंटे मंदिर में बैठे रहते तो मैं उनको क्या जवाब देता था मालूम? और आप 3 घंटे एक पर्दे पर दुनिया भर की बातें देखते बैठे रहते, मैं तो आपको कुछ नहीं बोलता। आप 3 घंटे फिल्म देखते हैं, मैं आपसे कुछ नहीं बोलता। आप हमें 1.5 घंटे भगवान के सामने बैठे हैं तो आपको तकलीफ क्या है? ये मेरी चॉइस है, ये मेरा कॉन्शियस जो अलाउ करेगा वो मैं करूँगा। इस तरह यदि हम एक बार तय कर लें अपने जीवन में, फिर हम बाहर नहीं देखेंगे। फिर हम यूनिवर्सिटी में भी जब पानी छान करके पीते थे और लोग ये कहा करते थे कि क्या यार इतनी बड़ी पढ़ाई कर रहे होते हैं और ये सब
अपने पास छन्ना रख के लाते हो पॉकेट में।
हाँ ठीक है,
मेरी अपनी चॉइस, मेरा अपना लाइफ स्टाइल, मैं अपने ढंग से जीऊँगा कि दुनिया के साथ से जीऊँगा। नहीं, ये मेरे अपने तय करने की चीज़ है, मेरे अपने जीवन को मुझे कैसे जीना है। बस ये अगर हमारे अंदर आ जाए साहस कि मेरे जीवन को मैं अपनी तरह से जीऊँगा, किसी के देखा देखी नहीं जीऊँगा, मुझे जिसने अपना भला जान पड़ता होगा वैसा जीऊँगा, और इतने ही मेरे जीवन से मैं ऐसा जीवन जीऊँगा कि दूसरे का भी भला हो। अगर ये भी हम अपने जीवन में तय कर देंगे तब तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो बहुत ऊँची स्थिति हमारी पहुँचती। हम अपना भला करने के लिए तत्पर हो जाएं और वो सब करें जिससे हमारा जीवन संभले, और जिस दिन हम ये तय कर लें कि हमारा ही नहीं सबका जीवन जिससे संभले मैं वो करूँगा, मैं वैसी वाणी बोलूँगा, मैं वैसा सोचूँगा, मैं वैसा करूँगा, मन वाणी और शरीर तीनों को मैं अगर इस तरह से रेगुलेट करूँ, इस तरह से एक डिसिप्लिन में रखूँ, अनुशासित रखूँ, इसी का नाम चारित्र्य। और कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। एक युवक जो है वो गुरु के पास पहुँचा, एक छोटी सी कहानी सुनाई और बस इतना ही। आज तो फिर जल्दी से हो गया ना, पर मेरा कंसंट्रेशन इसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ा रहा, तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने किसी पर देख भी नहीं रहा हूँ कि किसी को ऐसा हो ना जाएगा। वो ऐसा बता रहे हैं कि ये एक दूसरे के साथ होता है, मैं डर भी रहा हूँ। क्या हुआ, एक युवक पहुँचा गुरु जी के पास में कि साधु बाबा जी, और हमको जीवन में कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, हमारी वे ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, इसके बारे में आप बताइए। तो गुरु जी बोले कि देखो ऐसा है कि तुम मेरे पास दो तीन दिन रुको, फिर मैं आराम से बताऊँ। तो मैं कच्ची से रुक जाता हूँ, तो फिर मेरा एक काम करो आप। क्या काम करना है? वो जो सामने पेड़ लगा तुम जाओ, उस पेड़ को जितने अक्षब्द हो सके वो कहो, और इतनी उसकी जितनी क्षति तुम अपने शरीर से कर सको वो करो, उसको जितनी बैड मैसेज दे सको वो दो। अरे वाह, ये भी अजीब सा काम बताना है। अब लेकिन बाबा जी से किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए है तो बाबा जी का काम भी करना पड़ेगा। गया वो बेमनुष्य पेड़ के पास पहुँचा, उसको बड़े अक्षब्द कहे, गालियाँ दी, पत्ते पत्ते तोड़े, फूल तोड़े, खूब हिलाया दिलाया उसको, जो भी हो सकता था उससे उसको टॉर्चर जिस तरह से किया जा सकता वो सब किया। शाम को वापस लौटा, थका हारा, मन बहुत बोझिल। बाबा जी ने कहा कि किया तुमने वो काम जो मैंने कहा था? बोले हाँ किया, जाओ तो सो जाओ। रात होने लगी थी, सो गए। दूसरे दिन कहा लेकिन कुछ बहुत बेचैन। गुरु जी ने कहा कि रात कैसी गुजरी? उसने कहा कि बिल्कुल मन को अच्छा नहीं लगा, पर आपकी बात मुझे मानना थी, मुझे सारी रात लगा लगता रहा जिसमें मेरा क्या बिगाड़ा था, जो मैंने उसको गालियाँ दी, अक्सर दिखाई मारा पीटा, उसकी क्षति पहुँचाई, उसके बारे में खोटा खोटा सोचा विचार किया, उसने क्या बोला? तो जाओ जाओ, अगर ऐसा मन में विचार आया है तो जाओ, और अब उसको संभालो, उसमें पानी दो और उससे क्षमा याचना करो कि कल मैंने जो किया था वो अच्छा नहीं। जब बड़े भरे मन से गया, सबसे पहले तो उससे क्षमा मांगी कि मैंने कल गुरु जी के कहने से गर्व से मैं तकलीफ पहुँचाई, अच्छे से उसको संभाला, उसको प्यार किया, उस पेड़ को जितना उससे बन सकता उतना उसने उसकी सेवा करी, और बड़ा खुश खुश शाम को लौटा। गुरु जी ने कहा किया? हाँ, सब वो जैसा आपने कहा था वैसा सब कर गया, जाओ सो जाओ। सो गया, पर जवाब तो दे ही नहीं रहे गुरु जी, दो दिन हो गए कुछ बता ही नहीं रहे कि वे ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए। हम तो पूछने आए थे और अपना काम करवा लिया दो दिन, वो भी बाहिया था काम, कुछ भी बैंक खुल भी नहीं होती। ठीक है, अब दूसरे दिन सुबह उठी, आज क्या करना है, आज कुछ नहीं, विदा, जाओ वापस लौट जाओ। अरे मैं प्रश्न पूछने आया था ना, प्रश्न का उत्तर दिया आपने और कह रहे विदा। बोले मैंने दे दिया, मुझे समझ में नहीं आया गुरु जी आपसे उत्तर मेरे समझ में नहीं। मैं तुमसे एक बात और पूछना चाहता हूँ बेटे, उस युवक से गुरु जी ने कहा, कैसा ये बता, पहले दिन जब तुमने उसे गालियाँ दी, अक्षब्द करे, उसको क्षति पहुँचाई, तुम्हारा मन कैसा हुआ? बोले बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत मन बोझिल हो गया। दूसरे दिन तो बहुत प्रसन्नता रही। और अच्छा ये बताओ,
जब तुमने उसे गालियां दी या तुमने उसे क्षमा मांगी, उस दस ने कुछ कहा? कुछ भी नहीं कहा गुरु जी।
न पहले दिन वो मेरे से नाराज हुआ, न दूसरे दिन उसने मुझे कुछ थैंक्स दिया। वो तो बिल्कुल मेरे गाली और प्रशंसा दोनों में शांत किया।
तो मैंने उत्तर दे दिया। उत्तर मेरा यही है, जीवन जीने का एक ही वो है जो तुमने पहले दिन किया था। चाहे जिसको अपनी वाणी से क्षति पहुँचा, अपने शरीर से क्षति पहुँचा, अपने मन में उसके प्रति गंदे गंदे विचार लाओ, एक जीवन जीने का ढंग ये है। दूसरा जीवन जीने का ढंग ये है कि सबसे प्यार से रहो, सबकी मदद करो, सबके प्रति सद्भावना रखो। और तीसरा जीवन जीने का ढंग ये है कि जैसे वृक्ष हर स्थिति में भले और बुरे सब में शांत और क्षमतापूर्वक जीता है, वैसा जीवन जीना चाहे तो वैसा जीवन जी सकते हैं। जो क्षमतापूर्वक जीता है वो साधु का जीवन है, और एक गृहस्थ के जीवन में दूसरे को कम क्षति पहुंचाता है, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे की मदद करता है, यही जीवन जीने का ढंग है। इससे अधिक और अपने जीवन के कल्याण के लिए क्या किया जा सकता है? मेरे ख्याल से शुभ और अशुभ में से चुनना पड़े तो शुभ को चुनना, अशुभ को छोड़ देना, और कभी कभी शुभ और अशुभ दोनों के बीच शांत होकर के बैठ जाना, तब वो जो शुद्ध स्वरूप है हमारा, उसकी थोड़ी सी झलक वो हमारे भीतर आएगी। जब हम राग द्वेष दोनों से पार होकर के, सद्भावनाएं तो राग द्वेष, सद्भावनाएं तो हमारा राग है और दुर्भावनाएं हमारा द्वेष है, और जब हम आत्मस्थ हो जाते हैं वो हमारी वास्तविकता है। हम उसमें से जो प्राप्त करना चाहें, अधिक से अधिक हम सद्भावना रखें, और यह कि कभी कभी वीतराशता भी रखने की कोशिश करें, यही समीपीन चारित्र है। किसी से हमारा जीवन अच्छा बनेगा, किसी भावना के साथ कि हमें दृष्टि मिली, हमें ज्ञान मिला, अब हम अपने आचरण को भी संभालें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। सभी आचार्य गुरु विद्या सागर में